मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत सादर नमस्कार। फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। मित्रों, आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस के लिए मैंने जिस विषय का चयन किया है उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि जो विषय मैंने चुना है ये पिछले कुछ सालों से, स्पेशली मैं समझता हूं कि 10 सालों से लोगों का बड़ा पसंदीदा विषय है। इस पर खूब बातें हो रही हैं, लोग इस विषय का खूब इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले भी हैं। इस पर बहुत से लेक्चर भी होने लगे हैं, बहुत सी वर्कशॉप भी होने लगी हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि यदि उस लेक्चर और वो जो वर्कशॉप हो रहे हैं उसी में मैं अपने ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को भी उसी लाइन में अगर लगा दूं तो शायद इसे कुछ अहमियत मिले और चीजें और ज्यादा साफ हो सके। तो मित्रों, उसी के अनुकूल मैंने आज अपना विषय चुना है और आज का जो मेरा विषय है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हिंदी में इसे ही हम कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी पर बातें करूंगा। हो सकता है कि मेरे इस 30-35 मिनट के ऑडियो में सारी बातें पूरी न हो पाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत है इतना अधिक लोकप्रिय है, लोगों के दिल के इतने अधिक करीब है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें, और जो एक वैज्ञानिक बातें हो सकती हैं, तर्कपूर्ण बातें हो सकती हैं, या हम वैज्ञानिकता और तर्कपूर्णता को छोड़ भी दें तो जो एक व्यावहारिक बातें हो सकती हैं उनके बारे में मेरे प्रिय श्रोताओं को मैं कम से कम अपनी बात तो बता ही सकूं। फिर उनके पास और भी अपनी बातें हैं, उन्होंने और भी दूसरों से सुनी हैं, पढ़ी भी हैं, तो उन सबको मिलाकर के वो अपने लिए एक सही रास्ते की तलाश कर सकें। तो हो सकता है कि मित्रों, अगर यह बात आज इसी ऑडियो में पूरी ना हो सकी तो फिर हम इसके पार्ट टू में बात करेंगे, अदरवाइज इसी ऑडियो में सारी बातें पूरी हो जाएंगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं आकर्षण के सिद्धांत पर बात करना। आप लोगों को भी शायद ध्यान होगा, और जो बिल्कुल नए नए श्रोता हैं, बिल्कुल यंग एज के हैं, हो सकता है कि उनके समय में यह बात न हुई हो कि लगभग मैं समझता हूं कि 10 साल पुरानी बात होगी, जबकि एक किताब आई थी रांडा बर्न की, उसका शीर्षक था द सीक्रेट। इंग्लिश में वो किताब थी द सीक्रेट और हिंदी में उसका नाम था रहस्य। द सीक्रेट इंग्लिश किताब तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर हुई, बहुत ही उसकी चर्चा भी हुई, और जब हिंदी में छप करके ये हिंदुस्तान में आई तो डेफिनेटली उसकी भी बहुत चर्चा हुई, लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। और सच पूछे तो मजेदार बात यह है कि मुझे शक था कि यह किताब कितनी पॉपुलर होगी। हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा पसंद न करें, क्योंकि किताब की जो बुनावट थी, जो बातें थी, वो कोई बहुत ऐसी नई सी नहीं थी जिसके बारे में भारतीयों को बहुत ज्यादा मालूम न रहा हो, उसके बारे में जानते न हो, बातें न होती हों। सच पूछे तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि उस किताब में जितनी बातें हैं वे बातें हमको घुट्टियों में ही मिलती रहती हैं। इसीलिए मित्रों, मुझे लग रहा था कि शायद ये किताब उतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के मेरे प्रिय श्रोताओं ने और पाठकों ने मुझे झुठलाते हुए और उनकी उस किताब को बहुत हाथों हाथ लिया, और इसके लिए मैं अपने सभी प्रिय पाठकों का नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि एक बहुत अच्छे काम के लिए उन्होंने मुझे झुठलाया। मैं गलत रहा, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और बड़े गर्व के साथ स्वीकार करता हूं कि एटलीस्ट कम से कम खासकर भारत के जो पाठक हैं, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, यहां तक कि दूसरी भाषाओं में भी ये किताब आई, उन लोगों ने इस किताब को लिया, पढ़ा। अब ये बात अलग है कि पढ़ करके उसमें से क्या समझा गया, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और फिर उसके क्या परिणाम उनको मिले, लेकिन कम से कम एक क्यूरियोसिटी तो उनके अंदर जगी ही, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। मित्रों, मुझे लगता है कि जब अब जबकि मैं आकर्षण के सिद्धांत पर ऑडियो फॉर एक्सलेंस में अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इस विषय का आप लोगों का होगा, और अगर नहीं भी होगा तो एक सिंपल सी बात इसमें यह है, आकर्षण का सिद्धांत जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, जिस रूप में लोग इसे जानते हैं, वो कुल मिलाकर यह है कि आप अपने में कुछ भी सोच लीजिए और आप जो सोचेंगे वह हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपको बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से पढ़ने को भी बातें मिलेंगी, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं जो किताबों से ही मैंने लिए हैं, और बड़े अच्छे राइटर्स ने ये बातें लिखी हैं और बहुत अच्छे लोगों ने इसे इंडोर्स भी किया है, और लोगों ने कहा कि हां उनके जीवन में ये घटनाएं घटी। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं घटनाओं को आपको बता रहा हूं कि जैसे एक एक्टर थे, उन्होंने सोचा कि मुझे एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है, वो उस समय संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा कि मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है और मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा तो मुझे इतने मिलियन का डॉलर का चेक मिलेगा। चलिए हम मान लेते 5 मिलियन डॉलर का चेक मिलेगा, यानी कि 50 लाख डॉलर का चेक मिलेगा, और अगर आज 50 लाख रुपए कितने रुपए होते हैं इसको आप जानना चाहें तो $1 की कीमत 68 रुपीज है, 50 लाख में 68 का गुणा कर दें तो आप उतने रुपए समझ लें कि मुझे मिलेंगे। तो इसके लिए फिर उन्होंने ये कहा भी कि उन्होंने एक चेक बनाया और उस चेक में इतने रुपए डाले, 50 मिलियन डॉलर उसमें लिखे, और उन्होंने वो चेक अपने पास रख लिया, उसको रोज देखते थे, और एक दिन ऐसा आया जबकि सच में उनको 50 मिलियन डॉलर का चेक मिला। हो सकता है कि राशि में थोड़ी बहुत मैं इधर उधर कर रहा हूं कि पहले पढ़ी हुई बात है जो कि तो मेरे दिमाग में नहीं होंगी, लेकिन घटना लगभग लगभग ये उसका पैटर्न यही है, यानी कि उन्होंने कल्पना की, उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा एक्टर बन जाऊंगा कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इतने डॉलर मिलेंगे, और वो सच में हो गया और उसका चेक उनका कैश हो गया। इसी तरह की और भी घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको बताया जाता है, कहा जाता है कि आप जिस तरीके की कार खरीदना चाहते हैं, कार के एडवर्टीजमेंट अखबारों में आते रहते हैं, मैगजीन्स में तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत चित्र आते रहते हैं, आप उसको काट लीजिए, काट करके अपने दीवार पर चिपका दीजिए, उसे आप रोज देखिए, आते जाते देखिए, कल्पना कीजिए, फिर कल्पनाओं के बारे में बताया जाता है कि आप कल्पना कर रहे हैं कि आप सेल्स रूम में गए हैं और वहां कई कारों में से फिर आप इस कार को पसंद कर रहे हैं और सेल्समैन आपको कार दिखा रहा है, फिर शान के साथ आप कार खरीद करके और बाहर निकलते हैं, फिर अपने घर के गैरेज में उसे रखते हैं और रोज कार से आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने शॉप पे जा रहे हैं, इस तरह की आप कल्पनाएं कीजिए, और कुछ समय के बाद वो कार आपको मिल जाएगी, पता लगा कि आपने वह कार खरीद ली। आप बहुत बड़ा मकान चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, तो उस मकान का चित्र बनाइए, खुद स्केच बना लीजिए, किसी से कह के बनवा लीजिए, फिर आप उस चित्र को रोजाना देखिए या एक पैड पर उस चित्र को लगा करके रख लीजिए, रोजाना देखिए, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, ठीक उसी तरह से जैसे कि आप 5 मिलियन डॉलर्स के बारे में सोच रहे थे या कार के बारे में सोच रहे थे, और पता लगा कि कुछ समय के बाद आप उसी मकान में, उसी तरह के मकान में रहने लगेंगे। आप अपने आप को ये कल्पना कर लीजिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बन गया हूं, और फिर आप उस कल्पना को बढ़ाते चले जाइए कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं और इतने लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं और लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरस रहे हैं और अखबारों में और मैगजीन्स में मेरे बारे में छप रहा है, जय जयकार के नारे लग रहे हैं, और पता लगेगा कि एक दिन आप सच में बड़े आदमी बन गए हैं। ये आकर्षण के सिद्धांत को लोग इस रूप में जानते हैं। मित्रों, मैं आज आपसे केवल इसी के बारे में बात करूंगा, या आज नहीं कर पाया तो अगले भी ऑडियो में मिला करके ये कह लीजिए कि हम इसी के बारे में बातें करेंगे। पहली बात तो यह है दोस्तों कि ये जो चारों घटनाएं मैंने आपको छोटी छोटी बताई हैं, और आप दूसरी किताबों में देखेंगे तो इसी को बड़े दूसरे रूप में कहा गया है। कोई इसको सबकॉन्शियस माइंड का कमाल कहता है, कोई इसको साइकोथेरेपी का कमाल कहता है, कोई इसको टेलीपैथी का, मतलब अलग अलग नाम से इसे लोग अपने अपने तरीके से पेश करते हैं, लेकिन इसके केंद्र में यही बात होती है, और सिंपल सी बात वह यह कि आप सोचिए और वह हो जाएगा। आप सोचते रहिए, कल्पना करते रहिए, वह हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साइंस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, जो किताब आई थी रांडा बर्न की, जिससे कि ये जो थ्योरी है हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हुई, उस किताब का नाम ही है रहस्य। इंग्लिश में भी है द सीक्रेट, इस किताब का नाम भी है रहस्य। किताब के नाम में अपनी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, वो नाम अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन हमारे समझने में मुझे लगता है कि जो एक ले मैन की तरह हम लोग इन चीजों को समझ पाते हैं, तो हम रहस्य को फिर ऑटोमेटिक तरीके से या तो किसी धर्म अध्यात्म जैसी चीज से जोड़ देते हैं, रहस्य का मतलब है वो ईश्वर के हाथ में है, या फिर पता लगा कि अगर हम थोड़े से और दूसरे विचारों के अंधविश्वासी स्थिति में है तो फिर हम उसे जादू टोना इस तरीके की चीजों से जोड़ देते हैं। तो या तो हम धर्म में चले जाते हैं या फिर इधर जादू टोने वाले मामले में तंत्र में चले जाते हैं। फिर ये लगता है कि ये तो एक रहस्य है, और चूंकि रहस्य को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता। यानी कि यदि कोई चीज रहस्य है तो हमारा रोल केवल इतना भर रह जाता है कि हम उस रहस्य को घटित होते हुए देखें, क्योंकि वो रहस्य है। जब खुलेगा खुलेगा, नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, हमें खोलने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप घटित हो जाएगा। और सच पूछिए तो इसी शब्द को लेकर और इस शब्द को जिस तरीके से हमने समझा है, इसी को लेकर मुझे लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज का बना हुआ है। हमें लगता है कि केवल सोच लेने से बात बन जाएगी, लेकिन मित्रों जब आप इसी किताब को पढ़ेंगे, मैं रहस्य किताब की आलोचना नहीं कह रहा, उसमें जो बातें लिखी गई हैं मैं उसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम जब सिर्फ टाइटल पर टिक कर ऐसे एक दो चार पांच उदाहरणों को पढ़कर उसके बारे में अपनी धारणा स्थापित कर लेते हैं, वहां हम एक तरीके से सत्य के एक छोटे से अंश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सत्य तो वैसे ही बहुत विराट होता है, बहुत विशाल होता है, और उसके भी अगर हम एक छोटे से अंश को संपूर्ण सत्य मानकर जब चलने लगते हैं तो डेफिनेटली फिर यात्रा संदेहास्पद तो मित्रों होगी ही होगी। आप जब इसी किताब को पढ़ेंगे और बहुत धैर्य के साथ पढ़ेंगे और सिलसिलेवार पढ़ेंगे, और केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उनके शब्दों पर, उनके वाक्यों पर, उनमें दिए गए सिद्धांतों पर, उनमें व्यक्त किए गए विचारों पर जब आप विचार करेंगे, जी हां, विचारों पर जब आप विचार करेंगे, तब आपको ये रहस्य जो परत दर परत जो वहां आपको दिखाई दे रही है उनकी परतें खुलती चली जाएंगी और रहस्य स्पष्ट होता चला जाएगा। मित्रों, ज्ञान क्या है, रहस्य क्या है? ठंड के दिनों में आप सुबह उठते हैं और अपनी खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप चौंक जाते हैं कि मेरे सामने एक बिल्डिंग थी वह कहां गायब हो गई, सामने एक बड़ा खूबसूरत पेड़ था, कई पेड़ थे, वो कहां चले गए, क्या हो गया? आप इसलिए आपको ऐसा लगता है क्योंकि कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ धुंध फैली हुई है, कोहरा छाया हुआ है, यानी कि एक रहस्य की चादर पूरी की पूरी प्रकृति पर पड़ गई है। लग रहा है कि जैसे सब कुछ अननोन सा है, कुछ भी जाना नहीं जा रहा है, कुछ भी देखा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो कोहरा छटता जाता है, होता क्या है कि वही जो वहां वृक्ष थे जिन्हें आपने पहले देखा था, वो धीरे धीरे उनके आकार उभरने लगते हैं, वही बिल्डिंग जो दिखाई भी नहीं दे रही थी धीरे धीरे उभर कर पूरी तरीके से चमकीले रूप में आपके सामने मौजूद हो जाती है। यानी कि जैसे ही रहस्य हटता है वैसे ही सत्य सामने आ जाता है। सत्य है, मानकर चलिए कि जो रहस्य है वह भी है, लेकिन रहस्य का अंत सत्य में होता है। रहस्य का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने सत्य को जाना नहीं है। जब तक सत्य जाना नहीं जाएगा तब तक रहस्य मौजूद रहेगा, और रहस्य की खूबसूरती इस बात में है, सच पूछे तो इसकी उपयोगिता इस बात में है कि जो रहस्य दिखाई दे रहा है वो हमें आमंत्रित करती है, हमें इनवाइट करती है कि मुझे जानो, कि मैं हूं क्या, जानने की कोशिश करो, और उसी से प्रेरित होकर, उसी से आकर्षित होकर, वो रहस्य जो है इतना सुहावना होता है, इतना प्यारा होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उसमें सच पूछे तो इतनी जबरदस्त चुंबकीय शक्ति होती है कि वो हमें आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। इसके बावजूद कि हमें डर भी लगता है, क्योंकि जो रहस्य है पता नहीं क्या हो, हम जिस गड्ढे में गिर रहे हैं गिरने के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो गिर जाएंगे तब पता लगेगा कि वहां गद्दे थे या पत्थर थे या कुछ भी नहीं था, रसातल में हम चले गए हैं, वो तो गिरने के बाद पता लगेगा। इसके बावजूद उसमें एक ऐसी अद्भुत आमंत्रण करने की ताकत होती है कि हम उसकी ओर खींचते चले जाते हैं, और जब उसकी ओर खींचते चले जाते हैं तब धीरे धीरे वह खिंचाव हमें सत्य के निकट पहुंचाता चला जाता है। तो मित्रों, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसका जो रहस्य शब्द है उसका मतलब यही है। इस रहस्य में एक जबरदस्त किस्म का आकर्षण है, एक जबरदस्त किस्म का अट्रैक्शन है, ठीक वैसे जैसे कि किसी चुंबक में अट्रैक्शन होता है। चुंबक के सामने आसपास जैसे ही आप लोहे के कण लेकर के आते हैं, लोहे के कण अपने आप को उधर आकर्षित होने से रोक नहीं सकते, चाहे वो कितना भी प्रतिरोध क्यों ना करे, वो जाएंगे और उससे चिपक जाएंगे। ये रहस्य की शक्ति होती है। तो मित्रों, जो पहली बात जो खासकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मैं रखना चाह रहा हूं वह यह कि मानकर चलिए कि रहस्य अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। अगर वो शक्ति है तो यह है कि वो आपको आकर्षित करती है, और या कह सकते हैं कि वो आकर्षण की शक्ति है। हम क्यों कहें कि रहस्य में कोई शक्ति नहीं है, रहस्य में कोई जादू नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि रहस्य में कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये एक विज्ञान है, और इस विज्ञान की शुरुआत यह होती है कि वो आपको आकर्षित करती है और जबरदस्त रूप से आकर्षित करती है। मित्रों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये जो रहस्य है या जो आकर्षण का सिद्धांत है, इसका साइंस क्या है, इसके मूल में क्या है, इसके रूट में क्या है। इस रूट को मुझे लगता है कि यदि आप समझ लेंगे और समझने के बाद यदि अपने जीवन में आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि फिर यही जो आकर्षण का सिद्धांत है आपके लिए काम करने लगेगा। अन्यथा मित्रों, आपने 10, 20, 50 कहानियां सुन ली होंगी कि उसने सोचा और हो गया, उसने चेक रख लिया था और उसको उतने पैसे मिल गए, उसने मकान का स्केच बना लिया था, लगभग उसी तरह के मकान में वो रहने लगा। आपने 10, 20, 50 कहानियां ऐसी सुन ली होंगी, पढ़ी होंगी, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम 10, 20, 50 के साथ ये घटना घटित होती हुई सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर लगने लगता है कि हमारे साथ भी ऐसी ही घटना घटित होगी। हमारे साथ जब उनके साथ हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता, और सच बात है कि हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये होता है कि उन्होंने चित्र बना करके अपने दीवार में लगा देने के बाद फिर क्या किया, उस बीच की पूरी जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का वर्णन कहीं नहीं मिलता। लगता है कि सीधे कुछ जादुई तरीके से कुछ घटित हो गया, अचानक कुछ हो गया, अचानक कोई आया और कार घर उनके घर पर रख करके चला गया, या अचानक कोई बिल्डर आया और उसने कहा कि साहब ये मैं रजिस्ट्री करा करके ले आया हूं, आप इस तरह के मकान का विचार रखते थे और मुझे पता लग गया था, आप जाकर के उस मकान में रहिए, और उसने वो मकान उसको सौंप दिया। हमें ऐसा लगता है, कॉन्शियस लेवल पर तो नहीं लगता लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर हम ऐसा ही महसूस करने लगते हैं, लगता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होगा। इसलिए मित्रों, 50 लोगों के साथ जो घटित हुआ है उसकी पूरी प्रक्रिया से हम अनजान हैं, हम नहीं जान रहे, लेकिन 5,00,000 लोगों से जिनके साथ ये घटित हुआ ही नहीं है, जो आज भी उसके घटित होने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी कहानियां हमें नहीं मिलती, कहानियां मिलती ही नहीं। ऐसी कोई किताब नहीं है जो लोगों की असफलताओं के बारे में उनके कलेक्शन करे कि साहब उसने ये किया और ये नहीं हुआ, ये किया और ये नहीं हुआ। जिन्होंने किया, जिनका हो गया, उनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने किया लेकिन नहीं हुआ उनके बारे में हम नहीं जानते, और सच पूछिए तो हम जानना भी नहीं चाहते। जानना हम इसलिए नहीं चाहते कि हमने जो एक आस्था बना रखी है इस सिद्धांत के प्रति, इस लॉ के प्रति, हम अपनी उस आस्था में जीना चाहते हैं, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस तरह के असफल लोग आकर के हमें अपनी सच्चाइयां बताएं और उनकी सच्चाइयों को जानने के बाद फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कुछ शक करें। शक न भी करें तो कम से कम उसके बारे में सही सही तरीके से सोचे तो, उसको करेक्ट तो करें। जिस तरीके से हम अपने ऊपर उसे लागू कर रहे हैं, हो सकता है कि उसे लागू करने में कुछ खामी हो, कुछ कमी रह गई हो, तो उस कमी को तो कम से कम दूर करें ताकि हमारे साथ भी वो घटित हो सके। घटित होगा, लॉ अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन वो घटित होगा कैसे? क्योंकि लॉ का एक प्रोसेस होता है, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। जीवन में जितनी भी चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारी मंजिल एक प्रोसेस से होकर के ही गुजरती हैं। जो हम रोटी खाते हैं वो रोटी किस चीज से बनी है? वो रोटी आटे से बनी है, लेकिन क्या आटा ही रोटी है? अगर आप इसके पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो फिर आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, फिर आपको गेहूं तक पहुंचना पड़ेगा, गेहूं की फसल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे आटा नहीं आ गया है। किसी ने गेहूं के बीज जमीन में डाले और फिर उन बीजों का पालन पोषण किया, सिंचाई की, फिर काटा, फिर उसको उसकी सफाई की और फिर वो आटा चक्की में गया और फिर वो आटा बना और फिर उस आटे में पानी डाला गया और फिर उसकी लोई बनाई गई, फिर उसको बेला गया और फिर उसको तवे पर पकाया, उसको रख करके सेका गया और तब जाकर के वो रोटी बनी है। तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। ये हम कह तो देते हैं कि ये रोटी किसकी है, आटे की है या मैदे की है, कह देते हैं आटे की रोटी है, बात खत्म हो गई, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो मित्रों, होता यह है, मुझे यह लगता है कि जो लोग असफल हुए हैं, सच पूछिए तो मुझे वो ज्यादा काम के लोग लगते हैं, क्योंकि वो बता सकेंगे कि कहां कहां गड्ढा था, कहां कहां संकट उनके जीवन में आया। इसीलिए इसी भावना से प्रेरित होकर के, हालांकि आप मुझ पर हंसेंगे और हो सकता है कि थोड़े से नाराज भी हो जाए, मैंने एक किताब ही लिखी कि असफल होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो सफल लोग हुए हैं, सच पूछे तो उनके सफलता के जो सूत्र हैं वो हमें पूरी तरह से मालूम नहीं होते। इसलिए मालूम नहीं होते मित्रों कि जो सफलता के सूत्र होते हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं। एक भाग तो वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है, जो आप मैनेजमेंट कह सकते हैं, उस वो हिस्सा होता है, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, वो कह लीजिए इनविजिबल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसमें उनका अपना व्यक्तित्व है, टाइमिंग्स हैं कि वो किस समय में क्या उन्होंने किया, स्पेस है किस स्थान पर किया। तो हम टाइमिंग को गायब कर देते हैं, हम स्पेस को गायब कर देते हैं, हम उनके पर व्यक्तित्व के जो ऐसे इमोशंस को गायब कर देते हैं, हम उनके थॉट्स को गायब कर देते हैं, उनको किन किन लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सपोर्ट मिला हम उनको गायब कर देते हैं, हम तो केवल उस प्रोसेस को देखते हैं जो उन्होंने किया, और उस प्रोसेस में वो चीजें आती नहीं है जिनकी चर्चा मैंने अभी की। तो नतीजा ये होता है कि हमें जो सफलता का भी जो रहस्य मिल रहा है वो पूरी तरीके से नहीं मिल रहा। हाँ, मोटी मोटी चीजें हमें पता लग जा रही हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि हमारे काम की नहीं है, बेकार है हम उन्हें न जाने, कम से कम अगर कुछ भी न जानना हो रहा है तो कुछ जानना तो बेहतर है, तो वो चीजें हमें मिल जाती हैं। तो मित्रों, इसीलिए मुझे लगता है कि जो असफल लोग हुए हैं वो हमें ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं अगर हम उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले तो। लेकिन मुश्किल ये होती है कि असफल लोग हमें अट्रैक्ट नहीं करते, हम उनको सुनना नहीं चाहते, लगता है यार ये सफल ही नहीं हुआ है तो मेरे को क्यों सुने, क्योंकि वो जो बात बताएगा वो हम लागू कर नहीं सकते, और सच बात है कि वो हम लागू भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे काम के नहीं है, कम से कम हम उनसे बच तो सकते हैं। जो हम अपने अनुभव से कुछ समय गुजार कर, कुछ अपनी क्षमताओं को नष्ट करके, कुछ पैसा बर्बाद करके जो सीखते, उनके अनुभव से सीख जाएं और हम उनसे बच जाएं, तो अगर गड्ढे में गिर गए हैं, हमको पता लग गया है कि यहां गड्ढा है, तो हम कम से कम उस गड्ढे में गिरने से बचें, और बेहतर होगा कि फिर हम अपनी आगे की जर्नी को फास्ट तरीके से पूरा करें। तो मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सच पूछिए तो कुछ इसी तरीके से होता है। हमें पूरी तरह से चीजें पता नहीं लग पाती, ना तो उनका पूरी तरीके से पता चल पाता है जो सफल हुए हैं, और उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं चल पाता जो असफल हुए, जिनके साथ इस लॉ ने काम नहीं किया उनके बारे में भी हम नहीं जानते पूरी तरीके से, और जिनके साथ इस जिस काम किया है उनको भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता था, बहुत बड़ा कारण बन सकता था, हमारी जिंदगी में क्रांति ला सकता था, हम जो चाहते थे वह हमें दिला सकता था, वह सब नहीं हो पाता है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के बारे में हम थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बेस है वो बेस क्या है, आप इससे संबंधित कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप यहां तक कि सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सी किताबें आती हैं, अवचेतन मस्तिष्क पर बहुत सी किताबें हैं, टेली साइकिक पर, साइकोलॉजी पर बहुत किताबें हैं, आप पढ़ लीजिए। तो जितनी भी किताबें आपको मिलेंगी, मजेदार बात यह है, एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच इस बात को लेकर के होती है कि इनकी शुरुआत जो होती है वो विचारों से होती है, विचार, थॉट्स, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही है, आप सोचिए आपको मिल जाएगा। सच में अगर कोई व्यक्ति सीधे सीधे कहे कि आप सोचिए और आपको मिल जाएगा, और कहने वाला व्यक्ति वह हो जिसने इसका अनुभव किया हो और अपने बारे में बताए कि मैंने ये सोचा और मैं मिल गया, तो ये तो जो पूरी की पूरी दुनिया है उसके पीछे पागल हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ हो ही तो ये रहा है कि हम सोचते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि वो हमें मिलता नहीं है, और हम पता नहीं कितनी सारी चीजें सोचते हैं, उसमें से कुछ चीजें, एक आध दो चीजें, चार चीजें मिल जाती होंगी, ज्यादातर चीजें तो हमको मिलती ही नहीं है। तो यार अगर सोचने से ही कोई चीज मिल जाती तो सच पूछे तो अभी तक तो समस्या ही हमारे सामने नहीं रहती। आप खुद अपने बारे में बताइए कि क्या आपने चीजें सोची नहीं है, क्या आप सोचते नहीं है? चलिए मैं यही बात पूछता हूं आपसे कि आप एक सेकंड के लिए भी बिना सोचे रह सकते हैं? रह करके दिखा दीजिए, रह नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे दिमाग का। जो मेडिटेशन है, जो समाधि की स्थिति है, वो समाधि की स्थिति है क्या? वो थॉटलेसनेस की ही स्थिति है ना, कि विचार थम जाए, समाधि लग जाए। ये जो हमारे विचार हैं, ये हमारे थॉट्स हमको इत्मीनान से रहने कहां देते हैं, सोने कहां देते हैं? सोने में भी तो ये विचार चलते रहते हैं, सपने के रूप में, पता नहीं किन किन चीजों के रूप में। और ये जो हमारा बेचारा दिमाग है 150 किलोग्राम का, ये पता नहीं कितना परेशान होते रहता है, इस बेचारे को चैन ही नहीं है एक मिनट के लिए। हम तो चाहते हैं कि इसको हम चैन दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको चैन प्रोवाइड कर ही नहीं पाते। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, 24 घंटे में 60,000 थॉट्स। तो हम तो सोच ही सोच रहे हैं ना, तो फिर हमें सब क्यों नहीं मिल रहा है? मित्रों, यहीं से कहीं एक नई चीज की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो खुद पर ही डाउट करना सीखना होगा ना, कि लोगों ने बताया, हमने उस हिसाब से करने की कोशिश भी की, लेकिन चीजें नहीं हुई। तो हम बजाय इसके कि बताने वाले पर गुस्सा हो, बताने वाले पर अगर हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं तो हम सिद्धांत पर डाउट करें, तो शुरुआत तो मुझे लगता है कि इस बात से होनी चाहिए कि हम अपने पर डाउट करें कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ गलती हुई है। वहां से फिर सही की शुरुआत होगी, वहां से रहस्य के पर्दे उठेंगे और सत्य की यात्रा शुरू होगी। तो मित्रों, पहली बात यहां विचार के मामले में यह है कि अगर हम विचार करते हैं और वह हमें नहीं मिलता है, तो क्या हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, या विचार कर रहे हैं तो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से किया जाना चाहिए, या हम जो विचार कर रहे हैं वह विचार सच होता ही नहीं है, कुछ और दूसरे तरीके के विचार सच होते हैं? कुछ इस तरह की बातें आपके दिमाग में उठनी चाहिए। लेकिन मित्रों, सच्चाई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी विचार कीजिए वो सच हो सकता है, कोई भी ऐसा विचार नहीं है जो असंभव हो। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब अगर आप, मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता कि किस उपनिषद में ये बात लिखी गई है, वो कोई बहुत विद्वत्ता का मामला नहीं है, ये चीजें कई बार भारतीय ग्रंथों में आ चुकी हैं, जो हमारे एंशियंट जो हमारा लिटरेचर है उसमें एक उल्लेख मिलता है, और वो ये है कि जो जिन्होंने इस पूरे के पूरे संसार को रचा है, आपको मालूम है कि उनका नाम क्या है, उनका नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने संसार को रचा है, वो ब्रह्मा थे, उनको तो कहा ही जाता है स्वयंभू, मतलब उनको किसने रचा इसके बारे में संदेह मत कीजिए या प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि उस पर उसका फिर उत्तर नहीं मिलेगा, इसीलिए भारतीय दर्शन ने उनको नाम दे दिया स्वयंभू, यानी कि वो खुद उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू, स्वयं ही जन्म लेने वाला, तो मतलब उनका तो जन्मदाता कोई नहीं है। तो जब ब्रह्मा इस दुनिया को अकेले बैठे हुए थे, कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ शून्य ही शून्य है, शून्य ही शून्य है, तो वो बड़े ऊबे, तो उनको लगा कि यार अब क्या किया जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए, तो उन्होंने केवल सोचा और संसार बन गया, ये वाक्य मिलता है, उन्होंने सोचा, ब्रह्मा ने सोचा और संसार बन गया। तो सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, और सच पूछे तो बहुत ही साधारण और सरल सी बात लगती है, और अविश्वसनीय भी लगती है कि सोचा और संसार बन गया। ठीक इसी तरीके से मैं कहूं कि उसने सोचा कि $5 million मुझे मिलेंगे और मिल गया, उसने सोचा कि मुझे मर्सिडीज कार मिलेगी और मिल गया, इसी पैटर्न पर है कि ब्रह्मा ने सोचा और संसार बन गया। आपको अजीब सी बात नहीं लगती? आपको अतार्किक नहीं लगता? आपको अव्यवहारिक नहीं लगता? आपको अवैज्ञानिक नहीं लगता? हां, अगर हम सिर्फ इसी बात के बारे में सोचें तो ये सारी चीजें लगेंगी, अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है, फिजूल की बात है, पागलपन की बात है, झूठी बात है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये तब, जब आप इसकी पूरी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक। जैसे ही आप इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तब जाकर के आपको ये जो रहस्य है ये खुलने शुरू होंगे। जब प्रक्रिया, जब आप इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए अपने कदम उठाएंगे, उस यात्रा में निकलेंगे, तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कहने का मतलब क्या है, अंततः वास्तव में इस वाक्य में कितनी गहरी चीजें छिपी हुई हैं। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे कि एक समुद्र के एक बूंद में, पानी की एक बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ होता है, इस वाक्य में उसी तरह की गहराई है। ये सूत्र है, ये फार्मूला है, ये सिंपल सा सेंटेंस नहीं है। तो मित्रों, इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसकी तार्किकता क्या है, इसकी व्यावहारिकता क्या है, ताकि हम इसे समझ करके वास्तव में सही रूप में इसका अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट ऑडियो फॉर एक्सलेंस में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि जो भी बातें मैंने कही हैं उनको आप सब अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, उन पर आप थोड़ा सा विचार भी करें, अपने जीवन के कुछ अनुभवों को, कुछ घटनाओं को लेकर के जानने समझने की कोशिश करें, अपने जीवन की सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करें, और केवल इस संदर्भ में मूल्यांकन करें कि मैंने ये बनने का सोचा था, मैंने ये पाने का सोचा था, मैंने ये करने का सोचा था, फिर वो हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यदि आप ये होमवर्क थोड़ा सा करेंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे सिद्धांत तो आप खुद ही निकाल लेंगे, जिनकी चर्चा मैं अगले ऑडियो में करूंगा, और फिर आपको बड़ा मजा भी आएगा कि अरे मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी समझ सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं, मैं भी फिलॉसफर बन सकता हूं, ऐसी क्या बात है। और आप सोच लीजिए कि आप भी बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप भी बन जाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को अब यहीं समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट में फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट ऑडियो में फिर हम इसके बारे में अपन लोग बातें करेंगे, अपने व्यू एक्सचेंज करेंगे, और मैं चाहूंगा कि इस ऑडियो के बारे में आप अपने व्यू, अपना फीडबैक मुझे ईमेल से प्रोवाइड करें, ताकि मैं इसी सब्जेक्ट को अगले ऑडियो में जब आगे बढ़ाऊंगा तो आपके अनुसार और अच्छे से अच्छे रूप में आगे बढ़ा सकूं। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत सादर अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।